ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमने इनॉग्रेशन भी किया और अब हम वैलिडिट्री अर्थात समाप्ति समारोह भी कर रहे हैं, मगर आप सभी को आशा है कि सारे ही सेशंस बहुत पसंद आए होंगे। अगर बाहर मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही हो तो जितने भी हमारे जूरिस्ट अभी बाहर घूम रहे हैं वे कृपया कर सब ही हॉल के अंदर आवे। ये सारे सेशंस सिर्फ आप लोगों के लिए ही रखे गए हैं, थोड़ी सी स्पिरिचुअल बेनिफिट देने के लिए। तो इसीलिए जो भी मेरी आवाज जहां भी है सुन रहे हैं वे सभी हॉल के अंदर अवश्य पधारे हैं। परमात्मा को सबसे पहले निमंत्रण देती हूं कि वे मंच पे हमारे साथ विराजमान रहे। आज का वैलिडिटरी सेशन जिसका टॉपिक है रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन स्पीडी जस्टिस थ्रू मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, जिसकी आज बहुत ही आवश्यकता है, स्पेशली फैमिली डिस्प्यूट्स में। और आपको कल भी बताया था एक वक्ता ने कि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल हमारे पास फैमिली डिस्प्यूट्स में दोनों को यहां भेजकर उनका कंसिलिएशन कराती है। आज के मंच पर उपस्थित रहने वाले हमारे महान अनुभूतियों को मैं निमंत्रण देती हूं। राजयोगिनी डॉक्टर बीके निर्मला दीदी जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीपी दास जी, फॉर्मर जज हाईकोर्ट ऑफ ओरिसा कटक, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी, वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग इंदौर, राजयोगी बीके सीए ललित इनानी, सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमिटी माउंट आबू, राजयोगिनी रिस्पेक्टेड बीके पुष्पा दीदी चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग न्यू दिल्ली, ब्रदर जी वी राव सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, राजयोगिनी बीके विद्या दीदी नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग बागेवाड़ी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वरिया पैट्रॉन जूरिस्ट विंग हैदराबाद, बी के प्रदीप मेंबर जूरिस्ट विंग शांतिवन आबू रोड। आप सभी की तालियां बजती रहें जब तक हमारे सभी मेहमान मंच पर ना आवें, तब तक आप सब तालियों से सभी का स्वागत करते रहें। से निवेदन करूंगी कि हवे वह हमारे मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का बैच से सम्मान करें। राजयोगिनी आदरणीय निर्मला दीदी जी, हमारे ऑनरेबल जस्टिस बीपी दास जी, बीके ललित भाई जी, जस्टिस ईश्वरिया जी,
विद्या बहन, राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी जी, ऑनरेबल जस्टिस बीजी राठी जी, और बीके प्रदीप भाई, अभी हम सभी फिर से 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। मुझे आशा है कि अभी तक 2 दिन में जितने सेशंस आपने यहाँ पे अटेंड किए हैं वो सभी आपने एंजॉय किए। जिन्होंने एंजॉय किए वे हाथ ऊंचा करें। दीदी देखें, निर्मला दीदी देखो, सभी ने बहुत एंजॉय किया है स्पिरिचुअलिटी को, अर्थात सभी को स्पिरिचुअलिटी जीवन में पसंद है। हम किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे अपनी वैल्यूज के लिए लेके कह लो कि हम स्नेह, प्यार, शांति, आनंद सब चाहते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी टीचर्स अस द वैल्यूज। वैल्यूज हम सभी के पास है, मगर समय पे प्रॉपर यूज न करने के कारण हम उनका अभाव महसूस करते हैं, और वो सभी वैल्यूज हमारे अंदर होते हुए भी हम उनका प्रॉपर यूज ना करने के कारण उनके ऊपर हमारे देह के विकारों के रिलेशंस में आने से बहुत सारी धूल जम गई। पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा आता गया हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारे व्यर्थ विचारों के कारण, और इसीलिए उन वैल्यूज को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि कैसे हम इन पर्दों को हटाकर अपनी वैल्यूज को पुनः निखारते हुए अपने जीवन में समय प्रति समय, डे टू डे, इन एवरी स्टेप हम यूज कर सकें। और इसीलिए आज सबसे पहले हमने हमारी राजयोगिनी डॉक्टर बी के निर्मला दीदी को निवेदन करूंगी कि वे आके हम सबको आशीर्वचन दें। हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित आज के वक्तागण तथा सभा में उपस्थित सभी भाई बहने, 3 दिन तक आपने बहुत कुछ सुना, और सचमुच खुद पर आशीर्वाद किया, क्योंकि यहाँ पढ़ाई पढ़ी जाती है। आप सीखने आए हो और शेयर करने आए, तो शेयर करने में सीखना होता है एक दूसरे से। तो जैसे स्कूल में टीचर से आशीर्वाद नहीं मांगते, टीचर पढ़ाएगा, खुद पर आशीर्वाद करनी होती है, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे तो नेचुरली है खुद पर ऑटोमेटिक आशीर्वाद करेंगे। अपने आप को जाना, जिन्होंने अपने आप को जाना जरा हाथ उठाना। अच्छा है। परमात्मा को जाना, ये 2 मुख्य यहाँ के लेसन है आत्मा और परमात्मा और जितना अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी उन्नति हो जाएंगी। और बेटे के नाते से पिता का वर्षा मिल जाएगा, और पिता का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही, स्वर्ग के मालिक। हर एक की इच्छा रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्गवासी हो, उसके परिवार की भी इच्छा रहती है कि हमारे मित्र संबंधी स्वर्ग में जाए, परंतु सिर्फ मरने से स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए हमें देवता बनना चाहिए। और यहाँ हमारा यही लक्ष्य है पढ़ाई का कि हम अपने में दैवी गुण धारण करें। तो जब हम सब ऐसे दैवी गुण वाले बन जाएंगे तो दुनिया स्वर्ग बन जाएंगे। तो यही हमारी उम्मीद है कि आप सभी ऐसा अपना जीवन बनाए देवी देवता जैसा, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, उन जैसा जीवन बनाए, ताकि भारत फिर से स्वर्ग बन जाए। एक दिन स्वर्ग था राम राज्य की, गांधी जी ने चाहना रखी थी। एक दिन सतयुग था, त्रेता था, दोनों स्वर्ग थे जहाँ सब सुखी, शांत, हेल्दी, वेल्दी थे। अब फिर से ऐसी दुनिया बन रही है और परमात्मा ये भगीरथ कार्य करा रहे हैं, और इसमें आप सभी अंगुली देकर खुद भी विश्व के मालिक बने और अपने परिवार को, समाज को भी ऐसा देवी देवता जैसा बनाने का पुरुषार्थ करें, ऐसी हमारी शुभ आशा है। ओम शांति।
हमने दीदी द्वारा ब्लेसिंग्स सुनी, कितनी शॉर्ट एंड स्वीट ब्लेसिंग्स दीदी ने हमको दी है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें अपने अंदर देवी गुणों को धारण करना पड़ेगा। भले लिखते हैं स्वर्गवासी हुआ, मगर स्वर्गवासी होने के लिए स्वर्गवासी जैसे देवी देवताओं समान हमें बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। अब मैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, सॉरी हमारे बीच में ब्रदर जीवी राव उपस्थित हुए हैं, हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर बी के बिंदु भी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। अब मैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीपी दास जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ही इज ए फॉर्मल जज ऑफ हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक। हम उनको पहले भी सुन चुके हैं, मगर थोड़ा उनको विस्तार से बोलना है, आप सभी से मिलना है, तो हम फिर से उनको सुनेंगे।
थैंक यू। रेस्पेक्टेड राजयोगिनी डॉक्टर बी के निर्मला डायरेक्टर ऑफ ज्ञान सरोवर ऑनरेबल जस्टिस बी डी राठी वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जूरिस्ट विंग इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट बी के सी एल ललित इलानी सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमिटी ऑफ माउंट आबू अवर गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर जी बी राव राजयोगिनी बी के विद्या ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ब्रदर बी ईश्वरिया पैटर्न जूरी स्विंग इंदौर एंड मेंबर ऑफ जूरी स्विंग शांतिवन आबू रोड मिस्टर बी ब्रह्म बी के प्रदीप एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ जूरी स्विंग राजयोगिनी बी के लता आई एम हैप्पी टू बी हियर इन दिस पोडियम For the second time, because I am on this podium on the day I reach here, and again I have been given such a chance. I missed you and a gathering of learned persons, jurists, and highly spiritual, educated persons. I have learned here for last 2 days many things which I did not know. I learned about the organization, about its work, and the topic they talk, the peace, harmony, love, and compassion. But today, I have been given a task which is not a new topic in the judicial system, but it is contrary to this peace, love, and tranquility which we are discussing for last 2 days. It is dispute. कलिजुग है ना अभी जिस डिस्प्यूट आ गया है सो आज आई रीच्ड हियर एट द लास्ट फ्रैगमेंट ऑफ द स्पीच ऑफ ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी बी के गोपी एंड ही सेड दैट एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन सो ऑल्सो The human, but the ways are different, as I feel. We have many courts of law, many enactments have been done, courts have been established, but are we able to satisfy the common litigants? In many cases, I can say it is not, because there is delay in procedure and delay in because delay is due to the overloading of the docket though now the technologies have taken over many courts have been converted to e-courts but the filing is also overtakes the disposal. So, and what happens ultimately if someone files a suit? He has to wait for the disposal of the suit at the lower court for about 5 to 6 years, then in appeal another 10 years or 5 to 10 years. So, even a person ultimately succeeds, he goes to returns with a paper called decree or appellate order, not with a smile, but with sorrow that took such a long time, and this succeed in this suit means him nothing. So also the loser. One, I am just in my experience, I have encountered with a first appeal, the suit of which was filed in the year 1958, and the first appeal came to the court in the year 1968. I disposed of it in the year perhaps 2007 or 8. The suit is for a declaration regarding an adoption that is based on ancient adoption. That matter did not end there. That went to Supreme Court. Lastly, in the Supreme Court, it came to when the judges wanted to confirm the High Court order, the one of the parties said that, sir, my lord, we want to resolve the dispute by way of mediation. Both the parties agreed. Again, it was referred to one of the retired judges of the Supreme Court, and matter ended there in the year 2010, 9 or 10. So, the suit was filed by the person who was the plaintiff then. In the meantime, he died. He was substituted by his daughter. Daughter died and substituted by her legal heirs. So what is the point of this? If it can be ultimately decided in an ADR system, why you are not adopting the ADR system? So my topic today is the spiritually how the ADR system, mostly the conciliation and mediation can be done without resorting or going to the court of law. Then I must tell you what is the dispute. Dispute is the manifestation of conflict. Conflict is contradiction, variance, opposition, disagreement. But dispute is argument, quarrel, fight about, strive against, debate, or to a controversy. So, a conflict becomes a dispute, but all the conflicts do not immediately turn to dispute. It keeps on simmering in the hearts of the person. It gives rise to hatred. It gives rise to suspicion. Then only it turns to dispute, and people approach the court of law that is established by under the Constitution. But in a court of law, what happens? A dispute is adjudicated. But once a dispute is adjudicated, the underlying conflict that remains. A dictum was given, a decree was signed, you have to accept it. But what happened to the underlying conflict? The harmony doesn't remain, because the conflict that is underlying that remains unresolved. Then then the, again the procedure begins. Appeal, as I said, first appeal, second appeal, or directly to direct first appeal. So, in this judicial proceeding, the parties don't have control over the case. Uncertainty of judgment is there. So, it was thought that some process should be adopted for early disposal of the cases. So the ADR system was introduced. Accordingly, the CPC was amended, and the most recognized alternative dispute redressal system is negotiation, mediation, conciliation, judicial settlement like Lok Adalat, and arbitration. Now, before going to conciliation, time is very short, may I tell you about the mediation. The mediation is a structured negotiation process. A neutral third party, the mediator, assists the parties to agree on their own solutions to the disputes. They explore the third party perhaps in some help in evaluation of issues, explore interests, concerns and options of the parties. Mediator has to deal with effectively with emotional and hidden factors to assist the parties towards a resolution of disputes. So a mediator has a great role to play in this process, because he has to assess the emotional and hidden factors that remains within the parties. So, a mediator, here the spirituality comes. The mediator should be very trustworthy, have a control over the parties, likewise to get their confidence, win their confidence, so that they should be frank enough to tell him about what is the underlying dispute or underlying concern or underlying conflict within them. If a mediator is not compassionate, if he doesn't keep himself or herself with the position of the parties come to him, she will not be able to understand or gain the confidence of the parties. So, the mediator should have a mindset, the mindset of a growth mindset, a open mindset, instead of a fixed. Positive emotion he should have, that is gratitude. The attitude should be openness, determination. The somatic skill like mindfulness, self-compassion and emotional intelligence. These things are required for a mediator to mediate the issues between the parties. That comes from a mediator who is virtuous, is endowed with these virtues, as I said. Unless a mediator is spiritually enlightened, or his or he is not not open mind, with an open mindset, she will not be able to determine the disputes between the parties. This is the role of a mediator. But our legislation has recognized this, and it has mediation, like many ADR, has a distinct advantage over the traditional courts, tribunals, and format of disputes resolution. The advantage of ADR is including mediation or informality of the process, speed in dispute resolution, relative low cost, ability of process to focus on the disrupting parties' interest and concern rather than exclusively on their legal rights. So as I said, he must gain confidence of the parties and encourage the parties to make their own solutions. Much greater involvement of parties to the essential to the process, parties in the process. So parties are on the control of the process. They can at any point of time go away from mediation and come to court of law. So the essential confidentiality of process results in high success rate in mediation. Then what are the party duty of the parties? They can open their mind freely before the mediators. Unless, how can one open their mind before the mediator? Unless the mediator gains the confidence of the parties. Mediator's role being all more necessary, expedient, and a step to introduce mediation as one of the modes of the helping to accelerate the disposal of the cases in very, very worthwhile idea. And the mediation is far safer, far better method, which not only helps to resolve the dispute, simply, simultaneously gives an opportunity to the foes to become friends. It helps solely to develop a far better social relationship among the citizens. Mediation turns enmity to amity. It helps litigant to leave the court with cheers rather than a sorrow. So far as conciliation is concerned, it involves an impartial third party helping the people in dispute to resolve their problem. The parties are free to agree on the resolution or not. In the dispute resolution system, conciliation is the first stage of arbitration process, and conciliator is usually a member of the trade associations. Any dispute can be settled by conciliation where parties agree to seek an amicable settlement. Conciliation is a system where disputes are settled not only by means of formal court decision but by mutual concession of the parties through good offices of the counselor or judges. This process, which resolution of dispute is achieved by compromise or voluntary argument. So mediation is where you have the control over the case. It goes to a third party, but here the control of the court remains in the case of the conciliation, and the parties agree to solve their dispute through the compromise or voluntary agreement. These are the two aspects. There will be a lot of things to be said on the origin. The time is very short, and many honorable judges are there to speak here on the subject. I thank everybody at the validatory session to give me a chance in this August gathering, and my pranam to Nirmala Devi.
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का, सारे ही पॉइंट्स के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर आपने विस्तार से हम सभी को समझाया कि स्पिरिचुअलिटी, मीडिएशन, कंसिलिएशन सभी के ऊपर। अब मैं हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी, जो फॉर्मर जज ऑफ हाईकोर्ट ऑफ एमपी और वर्तमान में आप वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग के हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूं कि वे आके हम सभी के साथ अपने थोड़े से प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करें।
ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा की इस महासभा में विराजमान आप सभी बंधु बांधवों का मैं बहुत हृदय से स्वागत वंदन करता हूं। आदरणीय मंचासीन, मेरे सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ जन, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये सभी माने कि मैं सभी का याद कर रहा हूं। आज का विषय बहुत खूबसूरत, मैं कुछ हट के बात करना चाहता हूं लेकिन विषय के इर्द गिर्द ही। यदि हम आज के विषय के हिज्जे करें तो तीन प्रमुख होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नंबर दो मेडिटेशन एंड कॉन्सिलिएशन, और स्पिटी जस्टिस। स्पिटी जस्टिस की डिमांड क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसा क्या कारण हो गया कि आज सारा विश्व, हर देश की स्थिति है, केवल हमारे ही देश की स्थिति नहीं है कि स्पिटी जस्टिस की बात करने लगे हैं। एक सभ्य समाज की नींव और उसका स्ट्रक्चर वहां की न्याय व्यवस्था होती है, राज्य हो या देश, देशवासी हो या राज्य की प्रजा, प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है, स्वाभाविक नेचुरल, कि उसे न्याय मिले, राजा हो या शासन, उसका कर्तव्य और दायित्व है कि वो अपनी प्रजा को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करे। यदि शासन ऐसा करने में विफल रहता है तो लिटिगेंट्स और सभी लर्नेड एडवोकेट्स को यह अधिकार है कि वे PIL के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से और किसी फोरम के माध्यम से न्यायालयों का ध्यान आकर्षित करें कि राज्य का शासन जनता को न्याय प्रदान नहीं कर रहा है। और जब न्यायालय का ध्यान आकर्षित होगा तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वो शासन का ध्यान आकर्षित करे कि आप कहां डिफॉल्ट कर रहे हैं, शासन को मजबूर करे कि वो देश की जनता को न्याय प्रदान करने का पूरी पूरी व्यवस्था करे। जो न्यायाधीश अपने इस कर्तव्य में फेल होता है वो न्यायाधीश के लायक नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, उनका जन्म लेबनान में हुआ और उनकी मृत्यु अमेरिका में हुई, 1883 और 1931 के बीच की बात है, और उनका नाम था खलील जिब्रान। उन्होंने एक जीवन संदर्भ, जीवन संदेश, एक पुस्तक लिखी, कई पुस्तकें लिखी, और उसके पेज नंबर 52 पर एक बहुत अच्छी बात लिखी कि प्रिय न्यायाधीशों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को क्या न्याय देंगे जो ईमानदार है किंतु मन का बेईमान और चोर है, उस व्यक्ति को क्या न्याय करेंगे, उस व्यक्ति को क्या दंड देंगे जो व्यवहार तो देह हत्या का करता है किंतु उसकी स्वयं की आत्मा को समाज ने कई बार मारा है। उस व्यक्ति के साथ क्या न्याय करेंगे जो अपने अपराध से ज्यादा बार और कई गुना में पश्चाताप कर चुका है। भारतवर्ष की संस्कृति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मां गंगा में यदि डुबकी लगाएं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया कि यदि गंगा जल में बैठकर ही पाप करे तो उसको क्या दंड दिया जाए। न्यायाधीश न्याय मंदिर का पवित्र पुजारी है, न्याय की देवी का आराधक है। मुझे याद आता है नानी पालकीवाला साहब जो इमिनेंट जुरिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक और पुस्तक कई पुस्तकें लिखी पर एक पुस्तक वी द नेशन, उसमें लिखा कि आज देश की प्रजा से पूछा जाता है तो देश की प्रजा को न्यायालय न्याय मंदिर नहीं लगते, जुआ घर लगते हैं, कैसीनो। क्यों? यदि आपके पास पैसा है तो एक स्टेज से अंतिम स्टेज तक आप जैसा चाहे वैसा निर्णय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गरीब है, तो प्रथम न्यायालय से जो कुछ हो गया उसके लिए तो वही सब कुछ है। और न्याय की व्यवस्था क्या है, मैं कोई किसी का दोषारोपण करना नहीं चाहता, पर स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, फंडामेंटल राइट है हमारा फ्रीडम स्पीच। आप सबको पता होगा कि 1982-83 के आसपास या 80 के आसपास हमारे सर्वोच्च न्यायालय से एक फैसला आया कि एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के केसेस, उसमें सेक्शन 106 टीपी एक्ट का नोटिस अत्यावश्यक है। सबको पता होगा आप लोगों को। और जिन लोगों ने नोटिस में डिफॉल्ट करा या ठीक से नोटिस नहीं दिया, वे सारे लैंडलॉर्ड्स वर्षों तक नीचे से ऊपर तक लड़ते चले गए अपने टेनेंट्स के खिलाफ मकान खाली कराने के लिए, और इस न्याय दृष्टान के बाद हार गए। क्या करते है? कुछ समय पश्चात हमारे ही सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक व्यवस्था दे दी कि ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। फिर उन लैंडलॉर्ड्स के लिए कितना बड़ा न्याय कहें, अन्याय कहें, क्या कहें। तो न्यायाधीश की कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, वो व्यसनी नहीं हो, लोभी नहीं हो, क्रोधी नहीं हो, विनम्र हो, सहनशील हो, शिष्टाचारी हो। यदि ये क्वालिफिकेशंस नहीं है तो वो न्यायाधीश बनने लायक नहीं। एक बहुत उच्च क्वालिटी के फिलोसोफर ग्रीस के यूनान सुकरात, सबने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि न्यायाधीश में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो शिष्टाचार पूर्वक सुने, गंभीरता पूर्वक चिंतन करे जो कुछ भी आप बताएं, और बुद्धिमता पूर्वक आपसे क्वेरी करे, पूछे, आंसर दे, और निष्पक्षतापूर्ण न्याय करे। ये यदि क्वालिफिकेशन है तो ही वह न्यायाधीश बनने लायक है। आज हम लोअर जुडिशरी से ऊपर तक न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, पीएससी के थ्रू, या डायरेक्ट, कहने की आवश्यकता नहीं कि हम केवल जो कल बात बताई जा रही थी कि आजकल की विद्या नॉलेज इन्फॉर्मेटिक है, उसके आधार पर जो कुछ भी पीएससी में परीक्षा ली और दी, सेलेक्ट कर दिया, हमने कभी उसमें कितनी डिवाइन वैल्यूज है, कितनी ह्यूमन वैल्यूज है, कितनी डिवाइन पावर है, कहीं कोई स्केल नहीं रखा। राजनीतिक दल से जुड़े हैं या हमारा कोई माए बाप बैठा है तो हमारा एलिवेशन हो जाता है, और फिर समाज को क्या मिलता है, यही सब कहने का भाव कि इतनी ही अपेक्षा बार से भी है, केवल न्यायाधीशों से ही नहीं। आज बार वाले, कल भी मैंने निवेदन करा था कि किस प्रकार से हॉट टॉकिंग करते हैं जजेस के साथ। हम जानते हैं कि बेल के लायक प्रकरण नहीं है, और न्यायाधीश ने सही माने में कानून के दायरे में आपको सुनने के बाद आपको बेल नहीं दी, फिर देखिए आप उनका टेम्परामेंट। सबके लिए नहीं कहता मैं, पर क्या ये स्थिति नहीं है? तो हम बार वालों पर भी कहीं न कहीं क्वालिफिकेशंस की बार है, स्केल है हमारे लिए भी। तो ये जो कार्डियल रिलेशनशिप नहीं रही, जो पंक्चुअलिटी नहीं रही, जो ऑनेस्टी नहीं रही, जो लेबोरियस नहीं रहे, हम कानून पढ़ना नहीं चाहते, हम हमारे सर्वोच्च न्यायालय, भिन्न भिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहते, उनके न्याय प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं, ये न केन प्रकारेन निर्णय हमारे पक्ष में हो, नहीं हो पाता, तभी ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। और मुकदमे में हम एडजर्नमेंट कराना चाहते हैं कि सर ड्यू टू दिस रीजन प्लीज एडजर्न द केस। हम एनी हाउ बेंच हंटिंग करने का प्रयास करते हैं और प्रकरण बढ़ाते रहते हैं, इसीलिए ये पुलंदे इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसलिए आज स्पीडी जस्टिस की आवश्यकता हुई, क्योंकि मुकदमों के अंबार लगा लिए स्वयं हमने, कुछ बेंच की और कुछ बार की। दूसरा एक और कारण स्पीडी जस्टिस का कि हमारे संस्कार हैं। एक समय था पुरातन जब न्याय त्वरित होता था, जैसा कि कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि घंटी बजाओ, राजा न्यायासन पर बैठा, हम फरियाद लेकर दोनों पार्टी पहुंची, दोनों को सुना, तुरंत न्याय, प्रथम और अंतिम, और दोनों हंसते हुए घर, देन एंड देयर। वो संस्कार हम लोगों में है, और वो जब आज दिखाई नहीं देते तब स्पीडी जस्टिस की बात हम करने लगते हैं। तो ये दो कारण विशेष। अब यदि हम ध्यान दें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है, हमारे पूर्व अधिवक्ता ने भी, माननीय दयाल साहब ने भी कहा, कई बात है। आज सुबह के सेशन में बॉम्बे के विद्वान अधिवक्ता रायचंदानी साहब ना, उन्होंने भी कहा, एक तो ये कि न्यायाधीशों की कमी, एक जस्टिस यूएल भट्ट साहब हुआ करते थे, चीफ जस्टिस थे साउथ के, लेकिन मध्य प्रदेश में थे, वो कहा करते थे कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से और बार मेंबर्स की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता, न्यायाधीश कितने ही बढ़ा दो और लेकिन दोनों तरफ क्वालिटी नहीं है तो वही झगड़े बढ़ते जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, सब अपना अपना पक्ष देखेंगे। तो मुख्य बात कि हमें स्पिरिचुअलिटी आना ही चाहिए, बिना अध्यात्म के डिवाइन पावर्स नहीं हो सकते, डिवाइन वैल्यूज नहीं हो सकती। ह्यूमन बीइंग की जो वैल्यूज होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, वो कुछ भी बिना स्पिरिचुअलिटी के संभव नहीं है। हम मीडिएशन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जब से मानव जाति का इतिहास शुरू हुआ, तब से ये मीडिएशन की प्रथा चली आ रही है। एक उदाहरण दूं मैं आपको, महाभारत काल में श्री कृष्ण पांडव की ओर से एक प्रपोजल लेके गए धृतराष्ट्र के पास और कहा कि आप केवल 5 गांव दे दो, सारा डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 5 गांव। बड़ा साम्राज्य था कौरवों का। दुर्योधन ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं मिल सकती, उस प्रपोजल को ठुकरा दिया और महाभारत हो गई। यदि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो आप समझिए सारा सिनेरियो ही अलग होता। रामायण काल की बात करें तो श्री राम ने इतना वनवास भुगतने के बाद 10 साल करीब और जो कुछ साल 2 साल 4 साल बचे होंगे, अपनी पत्नी का किडनैप होने के बाद भी रावण की सभा में एक प्रपोजल भेजा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, अंगद को भेजा कि अंगद तुम जाओ और रावण को समझाओ। अंगद गए, रावण को समझाया कि तुम मां सीता को वापस कर दो, श्री राम क्षमा कर देंगे तुम्हें, डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा। लेकिन ईगो की लड़ाई, विकारों की लड़ाई, डिवाइन वैल्यूज का नहीं होना, रावण ने इनकार कर दिया। वो जानता था कि हार तो मेरी सुनिश्चित है। तो ये कहने का भाव, उस पुरातन समय से विवाद सुलझाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। हम 1927 की बात करें तो जिनेवा संधि के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1958 में क्या व्यवस्था हुई वो भी सब जानते हैं। हमारे देश में न्याय पंचायत का राज्य शुरू हुआ। एक कहानी सुनी होगी आपने, पंच परमेश्वर की। ये सब व्यवस्थाएं हमारे देश में थी। आज मीडिएशन में 3 पक्ष, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और तृतीय मीडिएटर। मीडिएटर में जब तक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज नहीं होगी, डिवाइन पावर या डिवाइन क्वालिटीज नहीं होगी, वो विनम्र नहीं होगा, वो सहनशील नहीं होगा, उसमें संवाद करने की मादा नहीं होगा, उसमें उत्प्रेरकता नहीं होगी दोनों पक्ष को समझाइश कराने की, निर्भीकता नहीं होगी। ऐसी 28 क्वालिटीज है मीडिएटर की, जो केवल और केवल अध्यात्म से ही आ सकती है। तो मीडिएशन फेल हो जाएगा। मीडिएशन की आवश्यकता जब स्टार्ट हुआ, लोक अदालत लगी पहली बार देश में, तब लोगों ने कहा दबी जुबान से ही, खुल के तो बोल नहीं सकते, पता नहीं जज साहब खारिज कर देंगे कल हमारी अर्जी, कि लोक अदालत और ये समझाइश की जो व्यवस्था कर रही है ना गवर्नमेंट और आप लोग, वो इसलिए कर रहे हो कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है, हमें न्याय नहीं दे सकते हो आप, तो ये अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढ रहे हो। आप तो न्याय कर नहीं सकते, मुकदमों के ढेर लग रहे हैं, इसलिए समझाइश की बात करते हो, लोक अदालतों की बात करते हो। मेरा कहने का भाव कि भाई साहब, जब तक अध्यात्म को नहीं अपनाएंगे, ना तो स्पीडी जस्टिस हो सकता है, ना मध्यस्थता हो सकती है। यदि हम सब अध्यात्म को अपनाएं तो विवाद उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट और बस 2 मिनट मैं यही, बाकी हम विषय पर सुनेंगे। बीइंग ए होस्ट, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और क्षमा प्रार्थी हूं आपकी मेहमान नवाजी में कोई त्रुटि हुई हो हमसे, किसी के प्रति कुछ गिला शिकवा रह गया हो तो कृपया क्षमा करें। कल और अंतिम सेशन है, पूरा एंजॉय करें, आध्यात्म को अपनाएं। हम आत्मा हैं, इस बात को अनुभूति में लाएं, प्रैक्टिस करके परमात्मा की याद में रहें। और इसको सहज और सरल करने के लिए एक बात बताना चाहता हूं मैं, कि जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां, और कहूं कि मेरा सिर दर्द है, मेरा हाथ दर्द है, मेरा पैर दर्द है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मुझ में कोई दर्द नहीं है, मेरे हाथ में, मेरे सिर में, मना मैं जो बोल रही हूं कोई अन्य शक्ति हूं, इसको समझिए। ये शरीर के अंग अलग है जो दर्द की फीलिंग करती है, सुख की दुख की, वो मैं आत्मा हूं। ये हमें अनुभूति और एक्सपीरियंस में लाना है, परमात्मा की याद में रहना है, उसका प्रतिदिन शुक्रिया करना है। करूं कि जुबान से शुक्रिया तेरा, जब भी खता हुई तूने मुझसे गले लगा लिया। ऐसे महान परमात्मा जो हमारे पिता हैं। और अंत में पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब यहां से जाएं तो अपनी अपनी सेवा केंद्र की बहनों से संपर्क करें और इसको कंटिन्यू करें अध्यात्म को। यदि कंटिन्यू नहीं करेंगे तो टूट जाओगे, भूल जाओगे, फिर वो लिंक नहीं बन पाएगी। कंटिन्यू करिए, फिर अपने घर पे मेडिटेशन करिए, कभी जाइए, लेकिन संपर्क में रहिए। आप सबको ये लगता हो कि संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और ये भी लगता हो कि हमें हमारे साथियों तक ये बातें पहुंचाना चाहिए, किंतु वे कारण अकारण यहां नहीं आ सकते, तो आप अपनी बहनों से सेवा केंद्र पर संपर्क करिए। जुरिस्ट विंग आपकी सेवा के लिए वहां भी उपस्थित हो जाएगी। आपकी बार में, आपके शहर में हम प्रोग्राम आयोजित करेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप जब घर लौटें तो परमात्मा आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसा मैं दुआ करता हूं। आप बहुत खुश रहें, परिवार में खुशियों के ढेर लगे। और निवेदन, इतना डिवाइन पावर और वैल्यूज लेकर जाओ और इतना अच्छा किरदार निभाओ, इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जस्टिस बीडी राठी जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबको बताया कि कैसे स्पीडी जस्टिस और कैसे पुराने समय से चली आ रही है। तो हम सब भी अगर इन वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करते हैं तो स्पीडी जस्टिस जरूर कर सकते हैं। मुझे याद आता है जब मैं इस संस्था में ज्वाइन हुई थी तो मुझे बताया गया था कि आपको अगर न्याय करना है और न्याय चाहिए तो आप अपने मन को एकदम शांत रखना, अर्थात जस्ट लाइक आइस, बर्फ की तरह अपने मन को शीतल रखना। बर्फ गलने के बाद भी पानी बन जाती है तो भी उसकी जो वैल्यू है शीतलता की वो नहीं जाती है। तो हमें भी अपने मन को इतना शीतल रखना है तो हम अनेकों को न्याय दिलाने के माध्यम बन जाएंगे। मैं हमारे वक्ताओं से नम्र निवेदन करूंगी कि हमने टाइम लिमिट दिया हुआ है। अभी मैं हमारे बीके चार्टर्ड अकाउंटेंट ललित इनानी जी को आमंत्रित करती हूँ। वो सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमिटी हैं, उनका बायोडाटा बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत ही क्या कहेंगे, मतलब अपने आप में इन्होंने की पहले से ही बहुत सारी रुचि रही है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सह किताबें लिखी हैं। आपने बीकॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, राजयोग मेडिटेशन किया है, IIAM किया है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कविताएं लिखते हैं, वास्तुशास्त्र, नेचुरोपैथी, काउंसलिंग, यूथ सर्विसेज हैं, सदा स्वस्थ जीवन आदि सब चीजें हैं। और आप 21 की उम्र में 1993 में परमात्मा के साक्षात्कार का बहुत ही अभिलाषी थे और संन्यास लेने जा रहे थे। उसी समय उनको 21 साल की आयु में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिन का राजयोग का कोर्स करा गया और उसी समय से वे ब्रह्मा कुमारीज से जुड़े और 97 में, अर्थात 4 साल के बाद,
अपना जीवन इस सोशल सर्विस के लिए समर्पित कर दिया और 2007 से आप यहाँ हेडक्वार्टर पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप हमारे यहाँ के सारे अकाउंट ऑडिटर से बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं और आप यूथ सर्विसेज के लिए पूरे भारत और कंपाल यानी युगंडा, मॉरिशस, ओमान, दुबई व नेपाल में सेवा कर अनेक बहुत सारी सेवाएं की हुई है, लिस्ट है। बस इतना ही देते हुए मैं ललित भाई से।
ओम शांति। मंच पर विराजमान हमारे सभी अति सम्माननीय अतिथिगण, आयोजक एवं सभा में उपस्थित न्याय प्रभाग से जुड़े हुए आप सभी पधारे हुए विशेष आमंत्रित मेहमान, आज के इस वैलिडेटरी सेशन का बहुत ही सुंदर टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन स्पीडी जस्टिस थ्रू मेडिएशन एंड कंसिलिएशन। हमारे दोनों पूर्व वक्ता हैं जो कि कई डिकेड्स के उनके अनुभव रहे हैं और उसके आधार पर उन्होंने इस विषय को काफी स्पष्ट किया। मैं इसका थोड़ा स्पिरिचुअल साइड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हालांकि एक प्रोवर्ब तो आपने सुनी ही होगी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विलियम एडवर्ड ग्लेडस्टोन ने कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हम स्पीडी जस्टिस की बात कर रहे हैं और उसमें जो दो टूल्स बताए हैं मेडिएशन एंड कंसिलिएशन। रिसेंटली आप सबके ध्यान में ही होगा, कुछ वर्षों पहले ही इसका एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट हमने देखा जब धीरूभाई अंबानी जी की डेथ हुई थी और उसके बाद दोनों भाइयों के बीच जो डिस्प्यूट हुआ था उसका जो निवारण हुआ वो इसी विधि से हुआ था, और उसमें कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा रोल था। ये स्पिरिचुअलिटी क्या है जो स्पीडी जस्टिस में भी मदद कर सकती है, यहां ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया कि जब न्यायालय में न्यायाधीश आते हैं तो उनके पास कई फाइलें होती है, एक दिन में कई जजमेंट करने होते हैं, सुनना भी होता है दोनों पक्षों को और जजमेंट देना होता है, और वो जजमेंट सही हो ये बहुत जरूरी है। इतने कम समय में लंबी चौड़ी हिस्ट्री को संक्षिप्त में सुनते हुए सही निर्णय देना निसंदेह एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद कर सकती है। क्योंकि आपने जो 3 दिन यहां गुजारे हैं और सवेरे का प्रथम सेशन जो राजयोग का आपने किया है, तो उसमें आपको बताया होगा कि कैसे परमात्मा के साथ स्वयं को लिंक करते हैं तो उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो वहां केवल शक्ति ही प्राप्त नहीं होती है लेकिन उसके साथ साथ अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, जिसमें एक परखने की शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और पावर ऑफ जजमेंट, वो भी प्राप्त होता है। हमारा मन और बुद्धि उस परमात्मा की याद से इतने क्लीन और क्लियर हो जाते हैं जो निर्णय करना बहुत सहज हो जाता है। ये राजयोग की पावर है। आप तुरंत, आप कुछ भी आपके सामने आएगा आप उसको परख सकेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है और इसमें झूठ कितना है, मिलावट क्या है, वो आप परख सकेंगे और सही निर्णय आप उसी समय कर सकेंगे। और इसके लिए ये राजयोग ये बहुत प्रभावशाली है। आप जैसे यहां देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कितने इक्विपमेंट्स यहां चल रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस इनविजिबल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी कितने इक्विपमेंट्स यहां यूज हो रहे हैं, वैरायटी टाइप के और विरोधाभासी भी। एयर कंडीशन यूज होता है तो हीटर भी उसी से चलता है, गीजर चलता है तो फ्रीज भी उसी से चलता है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी से। तो कितनी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसी प्रकार से जो राजयोग है ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो यहां राजयोग सिखाया जाता है, उस राजयोग के द्वारा हमारे जीवन जीने की जो प्रतिदिन की लाइफ में कई बातें आती है उसमें जो हमें निर्णय लेने होते हैं वह बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और सबको संतुष्ट करने वाले निर्णय हम ले सकते हैं। यहां जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जो हमारी कोर्ट्स बनी हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स बनी हुई है, उसमें मिलने वाला न्याय है, केवल उसी की बात नहीं हो रही है। हमारे प्रतिदिन की लाइफ में अगर आप एक पिता हैं तो आपको दो बेटे बेटियों के बीच भी कुछ निर्णय देना पड़ता है, उनके बीच भी डिस्प्यूट होता है, दो भाइयों के बीच भी डिस्प्यूट होता है। आप एक कंपनी के चेयरपर्सन है तो वहां एम्प्लॉयज के बीच भी डिस्प्यूट होता है, दो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बीच भी डिस्प्यूट होता है, वहां भी आपको न्याय करना होता है। ये केवल एक फॉर्मल जुडिशरी की ही बात नहीं है, और जो मेडिएशन और कंसिलिएशन की बात हो रही है वो भी फॉर्मल की ही बात नहीं हो रही है, लेकिन इनफॉर्मल हमारी लाइफ में हमें प्रतिदिन कहीं कहीं निर्णय लेने होते हैं, जो सही निर्णय हो और जो सभी पक्षकारों को संतुष्ट करने वाले हो, विन विन सिचुएशन वाले हो, वो निर्णय लेने होते हैं। और उन निर्णयों लेने में जो हमारे प्रतिदिन लाइफ के जो निर्णय लेने होते हैं उसमें ये राजयोग बहुत प्रभावशाली पार्ट प्ले कर सकता है, जिसका थोड़ा स्वाद आपने यहां चखा है। लेकिन हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने अपने स्थान पर जाएं तो ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र हर शहर में, हर एरिया में है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, निशुल्क है, बस थोड़ा सा समय अपने लिए देना है, तो उसके द्वारा आप में ये अष्ट शक्तियां विकसित होगी जो आपको हर पल एक सही दिशा की ओर ले जाएगी, जो आपको सही निर्णय दिलाकर, आपके द्वारा सही निर्णय दिलाकर आपके जीवन में खुशी, आनंद, शांति और प्रेम से भरपूर जीवन देगी। ये राजयोग की पावर है। फॉर्मल जस्टिस की जहां तक बात है तो हमारे दोनों जो ब्रह्मा कुमारी से लंबे समय से जुड़े हुए हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, आदरणीय ईश्वरिया जी, आदरणीय राठी जी, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बताया ही होगा कि कैसे कितनी भी बड़े केसेस उनके सामने आए हैं, कितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस उनके सामने आए हैं, लेकिन कैसे परमात्मा की शक्ति से, अपने अनुभव से और ज्ञान के विशेष अनुभवों से उन्होंने अच्छी तरह से उन्हें सोल्व कर लिया। तो उसी प्रकार से आप अगर इस राजयोग का अनुभव करेंगे अपनी लाइफ में, प्रयोग करेंगे, तो ये अष्ट शक्तियां जरूर आपको प्राप्त होगी। मेडिएशन और कंसिलिएशन, इसके बारे में जस्टिस दास, बीपी दास साहब ने बहुत विस्तार से बताया। ये बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे टूल है। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन से इसका कोर्स किया था, इसका बहुत अच्छा प्रभाव है और हम कई प्रकार के विशेष जो ऐसे केसेस डिस्प्यूट्स होते हैं उसको हम इसके द्वारा सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जैसे राठी साहब ने बताया कि अगर वैल्यूज हमारी लाइफ में होंगी तो उन वैल्यूज के द्वारा हम सही न्याय और स्पीडी न्याय दिला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपके आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रखता हूं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई जी का, जिन्होंने हमें बताया कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं, जिन्हें हम हमारे डे टू डे लाइफ में उपयोग करके हर समय अपने फेवर में जजमेंट्स ले सकते हैं। अभी मैं हमारी राजयोगिनी रिस्पेक्टेड पुष्पा दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सामने अपने इंस्पायरेशंस रखें, क्योंकि आप जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन भी हैं और बाकी तो बायोडाटा आपने उनका सुना ही है, तो समय ज्यादा ना लेते हुए मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने इंस्पायरेशंस हमारे सामने प्रस्तुत करें।
ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय वक्तागण और आप सभी स्नेही सम्माननीय मेहमान भाई बहनें, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सब उसके अनुभवी भी हैं, परंतु विशेष रूप से बात आती है स्पिरिचुअलिटी की। और ऐसा मैं समझती हूँ कि चाहे स्पीडी जस्टिस है, चाहे जस्टिस मीडिएशन है, सब कुछ उसकी पूर्ण सफलता अध्यात्म से ही संभव है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता समाधान स्वरूप बनाती है। आध्यात्मिकता में ही वह शक्ति है और वह विधि विधान है, सिस्टम है, जो भगवान का दिया हुआ है, जो मनुष्य के जीवन को ही, बड़ी से बड़ी समस्या हो या छोटी से छोटी, उसे समाधान कैसे करना है, जीवन ही ऐसा बन जाता है। और सबके आगे बातें तो आती ही हैं, यहां तक कि स्वयं जज जजमेंट देने वाला, उसकी अपनी लाइफ में ही कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आध्यात्मिकता हर एक को टॉप टू बॉटम ऐसा बना देती है जो समस्याएं समाप्त हो जाएं और हम समस्या स्वरूप ना बन करके समाधान स्वरूप बन जाएं, क्योंकि इससे कई आंतरिक शक्तियां जो आ जाती है, और विशेष रूप से मैं कहूंगी न्याय देने के लिए सहयोग की भावना भी चाहिए। आप सब बहुत कुछ जानते ही हैं, वैल्यूज का समावेश हो, दया करुणा रहम, परंतु जब सहयोग की भावना होती है तो कार्य जल्दी भी होता है, समय पर भी होता है और दूसरा सेटिस्फाइड भी होता है। हम स्वयं भी जल्दी फ्री हो जाते हैं और माइंड से भी फ्री सहज रह सकते हैं। एक हंसी की बात सुनाती है, एक व्यक्ति खड्डे में गिर गया। अब वो खुद तो निकल नहीं पा रहा था और बार बार आवाज लगाए, मुझे कोई खड्डे से बाहर निकालो। तो आता जाता व्यक्ति जब सुने तो जरूर है मन में ख्याल आता है कि बेचारा हाँ खड्डे में गिरा है, इसे निकाल देना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति उसके पास जाए, अब खड्डे से वो बाहर कैसे निकले, तो उसको कहे अपना हाथ दो मुझे, अपना हाथ ऊपर करो, मेरे को हाथ दो, मैं आपको खींचकर बाहर निकालूं। लेकिन वो व्यक्ति अपना हाथ ऊपर न करे। अब वो बेचारा कह के निराश होके चला गया सहयोग देने वाला। फिर दूसरा आया, उसने भी कहा हाथ ऊपर करो, मैं आपका हाथ लूं और बाहर निकालूं। वो किसी को भी अपना हाथ न दे और खड्डे में ही बैठा चिल्लाता रहे कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो ऐसे एक व्यक्ति जो थोड़ा उसकी पहचान का था, अचानक वहां से क्रॉस हो रहा था, तो उसने सुनी ये बात, तो उसको उसकी जो नेचर थी, उसकी जो व्यवहार की, अक्सर सबका पता चल जाता है, तो वो समझ गया था कि ये हाथ बाहर नहीं निकालेगा, ये अपना हाथ किसको नहीं देगा। तो उसने बड़े प्यार से और युक्ति से पास में गया और कहा, भाई मेरा हाथ ले लो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ ले लो। तो जैसे उसने कहा मेरा हाथ लो, तो तुरंत उसने उसका हाथ ले लिया और उस व्यक्ति ने उसको बाहर कर दिया। हमें आज के समय में, परिस्थितियों में क्या क्या है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मानव की शक्ति कितनी है, भले कानून की पावर है, उसे हम यूज करते हैं और समस्या का हल करते हैं, लेकिन परमात्मा तो हर एक मनुष्य के जीवन से ही इन सभी समस्याओं को दूर करने आए हैं। और अब वही ही परिवर्तन का समय है और ऐसी ही दुनिया लाने के लिए ही परमात्मा हम सबको इस अध्यात्म की ताकत देते हैं। जब इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना हुई, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, जल्दी ही पूरा करती हूं, तो 300-350 भाई बहन तुरंत प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो इस संस्था के साकार संस्थापक रहे, उनके पास आकर समर्पित हो गए। अधिक संख्या में माताएं थीं, कन्याएं थीं, परिवार भी थे, उसमें रॉयल फैमिलीज के भी थे जिन्होंने कभी किसी भी कार्य में कोई हाथ तक नहीं लगाया था। भिन्न भिन्न संस्कारों वाले थे सब। आप समझ सकते हैं, आपके पास भी थोड़े लोग इकट्ठे हो जाएं तो सारे दिन में कितनी बातें और क्या क्या हो सकता है, और लंबा टाइम अगर रहे तो वो बातें कहां से कहां तक पहुंच सकती हैं। तो हमारी जो प्रजापिता ब्रह्मा साकार संस्थापक, उनके साथ सहयोगी रीति से प्यारे ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा को निमित्त बनाया, जो कन्या थी, और उनका नाम मम्मा कह के हम सब पुकारते, तो मम्मा को निमित्त किया कि इन सब की सारी बातों को आप सुनो, ध्यान दो, क्योंकि बाबा का भी कार्य ज्ञान सुनाने का चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन का भी चलता था। अब मैं ये सारी कहानी नहीं सुनाऊंगी, पर कहने का भावार्थ ये है, तो मम्मा रात के समय जब सारी दिनचर्या पूरी हो जाती विधिवत, तो सबके साथ बैठती, उसको कहा जाता कचहरी, घर की कचहरी छोटी सी, तो सबसे पहले मम्मा सबसे पूछा करती, जिससे भी कोई गलती हुई हो वो हाथ खड़ा करे। तो कोई कोई, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हो जाती, किसको ऊंची आवाज से कह दिया, आए तो सब घरों से ही थे ना, अभी तो उनको ज्ञान योग की ट्रेनिंग मिल रही थी, और कैसे कैसे संस्कार होते हैं आप समझते हैं, कुछ भी। तो मम्मा कहा करती, जिससे कोई गलती हो वो हाथ खड़ा करो। तो जो अच्छे पुरुषार्थी लगन वाले होते, वो सच सच हाथ खड़ा कर देते कि हाँ आज मेरे से ये गलती हुई, और सभा के बीच में 300-350 तो सभा ही हो गई। तो मम्मा पूछा करती क्या गलती हुई, और वो स्पष्ट सच सुना देते, और मम्मा उनको शाबाश भी करती और उसको सुधारने की प्रेरणा भी देती। फिर भी दूसरी बात मम्मा पूछती, क्योंकि मम्मा के पास रिपोर्ट भी चली जाती थी, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को इस बात में तकलीफ पहुंचाई। तो मम्मा कहती, अच्छा जिन्होंने किसी को गलती करते देखा है, अब वो हाथ खड़ा करो। और वो भी कोई कोई होते, क्योंकि पारिवारिक माहौल था, और वो भी सच सच बता देते, क्योंकि उसने अपनी गलती नहीं सुनाई तो जिसने देखी वो सुनाता, मामा मैंने देखा ये जो फलानी बहन है वो दूसरे की ये चीज उठा करके किसी और जगह रख रही थी, गलती तो है ही ना। तो मामा उनको भी बड़े प्यार से कि भले उन्होंने अपनी गलती बताई नहीं, स्पष्ट नहीं की पहले, लेकिन दूसरे ने बताई, ऐसे ढंग से गाइड करती कि उन्हें ये नहीं रहता था कि दूसरे ने मेरी गलती को क्यों बताया या मुझे सबके सामने लज्जित किया। तो ऐसा मम्मा उनको भी बताती कि कैसे आप भी अपना सुधार करो। तो बहुत ही आवश्यक है, चाहे पारिवारिक रीति से, चाहे समाज में, चाहे हम जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर हमारा व्यवहार इस प्रकार का है कि हम एक दो के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं तो समस्याएं सहज ही हल हो जाती हैं। और आध्यात्मिकता ऐसा ही सिखलाती है, और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की आरंभ से लेकर इसी विधि से कार्य चलता चला आ रहा है कि समस्या समस्या रहती ही नहीं, सहज ही सुलझ जाती है। नहीं तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड आप सोचिए क्या नहीं हो सकता है, परंतु ये एक परिवार है, एक विद्यालय भी है और एक परिवार भी है। तो अध्यात्म एक सिखलाता है कि ये विश्व भी एक परिवार है, और यहाँ इसीलिए सभी भाई बहने, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, राजयोग का अभ्यास करने वाले आपको भी एक पारिवारिक दृष्टि से ही देख रहे हैं, और आप ऐसा यह अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये सारा ही विश्व एक परिवार है, ये भावना अध्यात्म से ही आती है, और तब ही एक ऐसा संसार, सुखी संसार सहज बन जाता है, और वो बनेगा और बन रहा है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमेशा हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार ऐसा रहे कि ना हम किसी के लिए समस्या बने, ना कोई और समस्या है तो उसका समाधान स्वरूप बनकर, सहयोगी बनकर चले, तो सब निर्णय सहज और अच्छे हो जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी का, जिन्होंने कितना सहज रीति से हमें समझाया कि हमें कैसे अपने जीवन में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए, वैल्यूज को अपने लाइफ में लाते हुए, अपने आप को भी हम सल्यूशन देते रहें और अनेकों को भी उनके जीवन, उनके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन दें। अर्थात परमात्मा जिन्हें दूसरे शब्दों में कहता है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। अभी मैं हमारे ब्रदर जीवी राव, जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली से हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपने ग्रीटिंग्स 2 मिनट में हम सभी के सामने रखेंगे। ब्रदर जीवी राव।
नमस्कार, ओम शांति। नमस्कार ऑनरेबल चेयरमैन, ऑनरेबल जस्टिस ईश्वरैया जी, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर बीके निर्मला जी, ऑनरेबल जस्टिस बीपी दास, ऑनरेबल जस्टिस बीडी राठी जी, राजयोगिनी पुष्पा जी, राजयोगिनी बीके विद्या जी, राजयोगिनी बीके लता जी, मैं बहुत सौभाग्य है मेरा कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे आदर किया और मुझे कुछ शब्द आपके साथ बोलने के लिए मौका दिया। मैं जब यहां पे आया था तो बाहर मैंने जो इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्लाक देखा, उसमें डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी जी का नाम था, जो हिज एक्सलेंसी गवर्नर थे राजस्थान के। वो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे और उनको, उनसे मेरे को बचपन में बहुत आशीर्वाद मिला, कई पिक्चर फोटोग्राफ थे।
मेरे पिताजी डॉक्टर जीवी जी कृष्णामूर्ति फॉर्मर कानून सचिव थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, 6 साल कानून सचिव रहे, उसके बाद 6 साल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे, और हम धार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे वाइफ साइड भी बहुत धार्मिक है, तो हमें कई चीजों का एहसास है और यहां आके बहुत चीजें सीखने को मिली। और ऐसा अद्भुत हॉल, ये हार्मनी हॉल जिन्होंने एक्सलेंसी चन्ना रेड्डी ने इनॉग्रेट किया, इसमें मेरा सौभाग्य है। मैं देख रहा हूं यहां पे 28 गुरुओं का, आपके महान भावों का फोटो है, जो कल एक स्पीकर ने कहा दिस इज अ स्पिरिचुअली चार्ज्ड एटमोस्फियर प्लेस विच एनीबडी हु स्पीक्स फ्रॉम या, यहां से जो भी बोलता है उनके सामने बोल रहा है, और उसके साथ आपका स्वस्तिक चिन्ह है विच इज फॉर वेल बीइंग प्रॉस्पेरिटी, और दो हार्ट्स बने हुए हैं यहां पे, इसका ये मतलब है आप दिल की बात कहिए, दिल से कहिए, दिल को निभाने वाली अच्छी बात कहिए, दूसरों के लिए समझने वाली बात कहिए। तो मैं दिल्ली में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का काउंसिल रहा हूं, और रिसेंटली वीमेन्स इकोनॉमिक फोरम में भी मुझे बुलाया गया, तो मैंने वहां पे कई चीजें कही जो मेरा एक फिलॉसफी है लाइफ का। तो मैंने देखा यहां आके कि सबसे अद्भुत बेहतरीन विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टर्स हैं वो अपने ब्रदर्स को भी राह दिखाने की बात किया उन्होंने, ये बहुत खुशी की बात है, और मैं इसलिए बहुत खुशी हूं और अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि मैं यहां पे आया। और मैं जस्टिस राठी साहब ने कहा कि हम इसको सब आपके तक पहुंचाएंगे, मैं सोचता हूं ये मेरा दिल की बात है कि हर हाईकोर्ट, हर जुडिशरी के कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट जुडिशरी हुआ या इवन सुप्रीम कोर्ट का एक 3 डे फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम निकाल के ये ऐसा प्रोग्राम उनके लिए आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि सारे देश में वकील और जज लोगों को इस चीज से फायदा पहुंचे। और ये मैं सोचता हूं आपका कैलेंडर भरा रहे, हर हफ्ते 10 दिन आपने किसी न किसी को बुला के उनको ये चीजें सिखाने का आप प्रयास करें, इसमें बहुत खुशी की बात है, ये मेरी दिल की बात है, मैं चाहता हूं ऐसा होए। जो टॉपिक आपने चुना है थोड़ा अंग्रेजी में बोलना है, हम अंग्रेजी में बहस करते हैं, तो आई विल स्विच ऑन टू इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू मी स्पिरिचुअलिटी इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ आवर अटैचमेंट एंड कम्युनियन विद द डिवाइन, एंड जो आत्मा और परमात्मा की लिंक की बात है। हमने देखा अभी गिनत में देर आर 4000 रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड एंड 12 मेजर रिलीजन्स। अब ये जो स्पिरिचुअलिटी है, अकॉर्डिंग टू मी जो चीज मेरे दिल में बात आई, स्पिरिचुअलिटी इज द सोल ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज द सोल ऑफ रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन की उसका आत्मा है। क्योंकि रिलीजन में आपके पास 100 चीजें हो सकती हैं, आप सुबह शाम पूजा करने की बात होती है, कुछ किस तरह से पूजा करेंगे, फूल देंगे, फल देंगे, खड़े होकर पूजा करेंगे, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज आपको सिखाता है, दैट इज दैट वी नो दैट वी आर अ क्रिएशन ऑफ अ डिवाइन पावर एंड वी मस्ट रियलाइज दैट वी आर अटैच टू अ डिवाइन पावर। नाउ देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द की वर्ड्स ह्यूमैनिटी, कंपैशन, लव, काइंडनेस, विजडम, रैशनैलिटी, ट्रूथ, कॉमन गुड, पीस, वैल्यूज, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, डिग्निटी, ऑनर, गुड नेचरनेस, रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, दीज आर द की वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट मस्ट बी देयर, एंड वी मस्ट रियलाइज that these must be there for anybody who is essentially a legal professional or a jurist. Now, coming to the point of mediation and conciliation, how spirituality would help mediation and conciliation, all these key words which makes us a human being, because essentially we are from an animal. From animal we have become to, and some of us still have animal instinct and do not realize. When you wake up, when you are doing your professional work, you do not realize
the fact that we ought to be human beings and we have to have a spiritual connect. Yesterday, one of the Guruji brothers, he said, ki first 10 minutes of your waking up time is the most crucial. Whenever you wake up, first 10 minutes, you be in touch with the divine. And that's what is spiritual. Spirituality is simple. Religion is complex. Religion has a lot of things. So, spirituality is the simple way of reaching God or doing the right thing. If you did anything in accordance with spirituality, it has to be right. It cannot be wrong. That is the greatness and power of spirituality that we have, and we are trying to incorporate so that we resolve our disputes by mediation and conciliation and we don't take it afar. Now, in UK and in European countries, China, France, America, a mandatory pre-mediation is a rule in some of the aspects. That aap pehle mediation, pre-mediation kariye, uske baad you can come to the court. This is a rule. And Article 5.2 of the European Union, jo parliament hai, it prescribes this. Hamare courts mein, commercial courts and consumer protection courts also have mandatory pre-mediation aspects. So that you don't go and litigate and you can resolve the dispute by mediation before you litigate. Now, mediation in India has become a very, very is an advanced mechanism. There is training for mediations. They are trained for months and the international mediators also come and teach mediation. It's a program by which mediators are trained to mediate so that they can persuade the people to come to a settlement. Suppose somebody says he owes me 1 lakh and somebody says it's only 60,000. They will say unko samjha bujha ke aap 75,000 pe settle kar lo. Is tarah se mediation process ek dono ko samjha ke karne ke liye unko training di jati hai. Abhi usme aur iske mediation se ke baad these programs, apart from that, lawyers have to be ethically, they have to be ethical standards. We have a pledge. There is an oath that is taken. Wo sab hum log bhool gaye hain ki we will, the pledge and the oath says we will not adopt corrupt practices, we will not prescribe, misguide our clients, we will not try to proliferate litigation unnecessarily. Ye sab cheeze ek oath hai, wo phir se hame lena chahiye. Or even on the vakalatnama, the client should know that the lawyer cannot mislead him. Now, abhi main, sorry, main thoda late aaya, main ek television program kar raha tha, usme malicious prosecution, jhoot moot ke itne case hamare court mein hai, malicious prosecution, perjury, false affidavit file kar dete hain, aur criminal and civil defamations ke issues jo galat hote hain, usme main bol raha tha, to main ridhur. Now, important thing is, spirituality will give you an attitude. The attitude is a very important word in the legal terminology. Ki aapne apna attitude theek karna hai. That we will not play games, we will not play tricks, we will not use dishonest means, we will not mislead our client, we will essentially make an effort to resolve the dispute. So once you have an attitude, just like a positive attitude, the attitude to do the right thing is what spirituality will give you, and therefore, as a matter of fact, I have never taken a case of any wrongdoer or any false proceeding till date. I have never, as a moral and ethical value of mine, I have never done it. And also, even before the matter goes to litigation, I have made every effort to settle the dispute even before we are talking about mediation. So this is something we must all adopt to ourselves. Now, finally, I would like to just say that today we need the change of laws. Today a new parliament building has been inaugurated. This is a change, it's a very auspicious day. Today when the new parliament is building, we hope newer laws will come into force. We can help newer laws come into force to help our litigation. And we can all help the cause of administrative justice by ensuring that we ensure that the dispute are settled by mediation and negotiation and alternative dispute resolution. And therefore, it is our beholden duty to ensure the disputes are resolved. We must make that effort, and for that,
a good spiritual guidance, just like the way we've got in the last few days, and what we have seen in the spiritual agenda will help us to be better lawyers, to better improve the entire society and administration of justice. Thank you very much.
Shukriya, brother G.V. Rao ji ka. Unhone bhi worldly laws ke hisab se hame conciliation and mediation bataya. मेरी समझ में जो आया है कि कंसिलिएशन एंड मीडिएशन के लिए दो जनों की आवश्यकता है. दिस इज एज पर वर्ल्डली लॉ. सिमिलरली एज पर गॉडली स्पिरिचुअल लॉज देर आर टू थिंग्स. वो क्या है? मेरी बॉडी और मैं. सो वी रिक्वायर नाउ टू डू मीडिएशन एंड कंसिलिएशन बिटवीन माय सेल्फ एंड मी. I and myself. तो इन दोनों के अंदर हमें कंसिलेशन और मीडिएशन करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम अपनी स्पिरिचुअल उन्नति बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जीवन में सभी वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं. अभी मैं हमारे बीच राजयोगिनी बी के विद्याबेन हैं, उनसे कहूंगी कि वो भी अपने ग्रीटिंग्स हमारे सामने रखें.
ओम शांति. वैसे ये मीडिएशन और कंसिलिएशन जब आया इस धरती पर तो मुझे एक कहानी याद आ रही है जो पुराण की कहानी है. महाभारत का युद्ध हुआ, धर्मराज अपने सीट पर बैठे थे राजा बनके, तो एक केस उनके सामने आई. केस यह था कि दो व्यक्ति आए और उनका डिस्प्यूट था. क्या डिस्प्यूट था? कि एक ने दूसरे को अपना जगह बेच दिया था, सेल किया था, और दूसरे ने उसको लिया था. जैसे ही उन्होंने उस जगह को या उस फील्ड को हल करने लगे तब उनको एक पेटी मिली जिसमें बहुत सारे गहने और पैसे थे. तो उन्होंने आकर ये सेलर को आकर बताया कि ये आपकी प्रॉपर्टी, शायद आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होगी, इसलिए ये पेटी मेरे को मिला है आपके खेती पर, तो आप इसको ले सकते हो. ऐसे उन्होंने कहा. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने जगह बेच दिया, माना उसके साथ साथ जो भी उसके नीचे है या ऊपर है सब आपके हो गए, इसलिए वो मेरा नहीं हो सकता अभी, ऐसे बोला. तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है और ये उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, लेने को तैयार नहीं है. तो डिस्प्यूट आ गई धर्मराज के सामने. तो धर्मराज ने देखा, उन्होंने कहा चलो अगर यही प्रॉब्लम है तो फिर आप दोनों बांट लो उसमें. उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो मेरा नहीं है मुझे स्वीकार ही नहीं होगा, हम लेना नहीं चाहते हैं. दोनों पार्टी यही बोलने लगे. धर्मराज को क्या उत्तर देना समझ में नहीं आया, तो उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा. तो श्री कृष्ण ने कहा उनको कल आने के लिए बोलो. तो एक दिन का एडजर्नमेंट हो गई और नेक्स्ट डे फिर से आ गई वो दोनों पार्टी. और दोनों पार्टी आ गए और फिर से उनको पूछा गया कि अभी आपके केस क्या है, आप बताओ अभी बोलो. तो फिर एक ने कहा मैंने इनको जगह दिया है लेकिन जगह के नीचे जो प्रॉपर्टी था, एक पेटी था, वो मेरा होगा, इसलिए उसको मेरे को देना है. और दूसरे को पूछा तो उसने कहा जब उन्होंने जगह ही दे दिया तो फिर प्रॉपर्टी अंदर का जो भी है वो मेरा होगा, इसलिए मुझे चाहिए. अभी आप समझ रहे, पिछले दिन प्रॉब्लम अलग था और आज के दिन वही केस इस रूप से बदल गया. कारण क्या हो गया? धर्मराज को कंफ्यूजन, क्या उत्तर देना उनको, जजमेंट क्या देना समझ में नहीं आया. तो उन्होंने फिर से श्री कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण ने कहा कलयुग शुरू हुआ है. ठीक इसी रीति से आज संसार में हम देखते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं, उसमें एक ही प्रॉब्लम आया है. सेम सिचुएशंस, सेम पार्टीज, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन उनके देखने की नजरिया बदल गई है अथवा एटीट्यूड बदल चुकी है. अगर वो एटीट्यूड बदल गया तो आज संसार में जो भी डिस्प्यूट्स है अपने आप सेटल होते हैं. फिर ये मीडिएशन की, कंसिलेशन की इतना प्रॉब्लम्स भी नहीं हो सकते, ऐसे मेरा विचार है. तो वह एटीट्यूड चेंज करना ही स्पिरिचुअलिटी का काम है और वह काम अभी चल रहा है. आप तीन दिन से सुनते आ रहे हैं कि मेरा ओरिजिनलिटी क्या है, हम कौन है और ओरिजिनली हम कौन है, ओरिजिनली हमारे अंदर क्या है. आप सुन रहे हैं सब पॉजिटिविटी ही हमारे अंदर था लेकिन आज नेगेटिव बन चुके हैं, तो अगर ये एटीट्यूड बदल गया तो ये संसार फिर से सुंदर बनेगा। वही स्पिरिचुअलिटी का एक मकसद है और ये काम करने के लिए स्वयं परमात्मा आ चुके हैं, उनसे हम शक्ति लेंगे और स्पिरिचुअलिटी को अब अगर हमारे लाइफ में लाएंगे तो जो इस भारत को या इस संसार को या फिर इस दुनिया को सुंदर बनाने का जो लक्ष्य सभी ने रखा है वह पूर्ण हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसलिए सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और जो इतनी बातें कर रहे हैं कंसीलिएशन और मीडिएशन की, तो हम सभी अपने कंसीलिएशन और मीडिएशन परमात्मा के साथ करेंगे। उसके लिए मैं डॉक्टर बी के बिंदु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आके हमें मेडिटेशन कराएं।
ओम शांति। हम सभी 3 दिन से काफी परिचित हो गए आत्मा और परमात्मा से, तो बस अपनी आंखों को खुला रखेंगे और जैसे जैसे मैं कहूंगी उस दृश्य को अपने मन पर देखते हुए अपने आप को उस परमात्मा से जोड़कर खुद को रिचार्ज करेंगे। तो हम चलते हैं उस परमात्मा के पास अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। सब सीधे होके बिल्कुल आराम से बैठे। ओम शांति। मैं आज इस हॉल में शांत स्वरूप होकर बैठी हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती हूं। अब मैं आत्मा इस भ्रुकुटी से अपने आप को उस परमात्मा के पास लेकर जा रही हूं। परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, सुखों का सागर है, शांति का सागर है। उसके पास इस आकाश से भी ऊपर, तारामंडल से भी ऊपर उस लाल सुनहरी दुनिया में उस परमात्मा के पास मैं आत्मा पहुंच गई। परमात्मा के द्वारा मुझ आत्मा पर बहुत सारी प्यार की किरणें बरस रही हैं, सुख के सागर से सुख की किरणें भी मुझ पर बरस रही हैं। मैं आत्मा इस प्यार से, इस सुख से अपने आप को भरपूर कर रही हूं। मैं आत्मा परमात्मा के पास अपने आप को शांति से भी भरपूर कर रही थी। मुझ आत्मा को ये प्यार सुख शांति सारी शक्तियां परमात्मा से प्राप्त हो रही हैं। इन गुणों और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। इन गुणों और शक्तियों को भर कर मैं अपने द्वारा इसे अपने परिवार में प्रवाहित कर रही हूँ। सभी को बांटते हुए मुझ आत्मा को बहुत खुशी मिल रही है। इस लाल प्रकाश में भरपूर होकर मैं आत्मा वापस धीरे धीरे उस परमात्मा के दुनिया से फिर तारामंडल को क्रॉस करते हुए वापस इसी हॉल में आ गई, इस शरीर में वापस आ गई। ओहो कितना ये सुखमय आनंदमय अनुभव हो रहा है। इस सुखमय और आनंदमय अनुभव को मैं सदा अपने आप में भरपूर करती रहूंगी। अब हम वापस उस हॉल में अपने आप में यहाँ वापस आएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंदु बहन का जिन्होंने हमें इतनी सुंदर गहन अनुभूति कराई। अभी हम प्रोग्राम के अंत में हैं। आज के जो हमारे चेयरपर्सन हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वरिया, मैं उनसे कहूंगी कि आज के सेशन को समाप्त करें और सार में सभी वक्ताओं के और अपने विचार हमारे सम्मुख रखेंगे। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वरिया।
ओम शांति। दो दिन से हम भगवान का घर में, बाबा का घर में, अपने घर में आए हैं और अभी ये वैलिडिटी सेशन में जो रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द स्पीडी जस्टिस के बारे में पहला जो ब्लेसिंग्स दिया है डॉक्टर बी के निर्मला दीदी ने बोला इधर आके अपने आप को जाना, माना आप समझ गए हैं आप आत्मा है, एक स्पिरिट है, एक प्राण है, एक शक्ति स्वरूप है, कॉन्शियस है बोल के। और दूसरी बात बोला अपने पिता, आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा, परमात्मा इज द गॉड, ये भी जान गए हैं। और अपने इसमें एक लक्ष्य ही रखना चाहिए, हम भी मानव से देवता होना, माना देने वाले से लेने वाले से देने वाले बनना, क्योंकि देवता ये देता है, लेवता ये लेता है। अभी ये संस्कार अपने बरना है और ये लक्ष्य है इस जन्म के बाद अभी ये जन्म में डिवाइन क्वालिटी सिंबाइब करना है, जन्म के बाद भी एक दैवी स्वरूप धारण करके देवता जैसा जन्म लेना है, ये लक्ष्य है बोल के दीदी बीके निर्मला दीदी ने शॉर्ट में 2 मिनट में बोला। फिर इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस जो बीपी दास ने पूरा जो मीडिएशन कंसिलेशन के प्रोसेस स्पीडी जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम कैसा काम करता है, कैसा स्पीडी जस्टिस होता है, उसके बारे में इन डिटेल बोला है। ऑनरेबल जस्टिस बीडी राठी ने भी इसके विषय कुछ उदाहरण से बोला है। ललित भाई ने स्पिरिचुअल एंगल देते हुए अपने जस्टिस पीडी जस्टिस जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड उस वास्ते जल्दी कर दिए तो फिर लोग दोनों को होता। और आज की इंस्पिरेशन जो चेयरपर्सन ऑफ ज्यूरिस्ट विंग बीके पुष्पा दीदी, और मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि फ्रॉम माय स्टेट डॉक्टर जीवी राव सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सीनियर डिजिग्नेट एडवोकेट इज फादर वाज ए जीवी के कृष्णमूर्ति एंड ही वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड वेरी स्टालवर्ट देयरफॉर ही हैज टोल्ड बिफोर अस दैट ही डजंट टेक एनी केस विच इज अनराइटियस, वो झूठा केस नहीं लेता है, जो सच्चे सच्चे केस में होता है उस वास्ते सच्ची कमाई करते हैं। उस वास्ते भाई साहब को बहुत बधाई हो क्योंकि ऐसा वकील बहुत कम रहता है। और दूसरा विजया दीदी ने और लता और ये सब लोग अपने के सामने बोला है और मेरा परिचय मैं ही देता हूँ। मैं आंध्र प्रदेश का जो फार्मर अपने अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र एंड तेलंगाना स्टेट्स का एक्टिंग चीफ जस्टिस था। 14 ईयर्स अपने जजशिप करा, बाद में चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन द स्टेटस ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा दिया था, वहां 3 साल करा, बाद में आंध्र में भी चेयरपर्सन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी मॉनिटरिंग कमीशन करा। आप जैसा कोई भी प्रोग्राम में नहीं आया था, मैं 1999 में यहीं ज्ञान सरोवर में वहां हार्मोनी हाउस में 3 दिन रहने का भाग्य मिला, 2 जजेस के साथ आया। उसके पहले मेरे के ऋषि ने आत्मा का परिचय दिया, अगर इधर आए तो फिर इंस्ट्रक्टर बोला आप खुद को जाना जानते हो, हाँ जानता हूँ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को जानते हो, नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा गुरु नहीं बोला है। आप जैसा आत्मा है वो परम आत्मा है, इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों जैसी रहता मगर उसमें आप सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्तियां आप में है, उन्हें सागर जैसा उन्हें ओशन ऑफ पीस ओशन ऑफ नॉलेज ओशन ऑफ पावर्स ओशन ऑफ एवरीथिंग इज अ क्रिएटर ऑफ होल दी ह्यूमैनिटी, पूरा प्राण कोटि का उन्हें क्रिएटर है, विश्व का मालिक है, अपने तीनों लोगों का मालिक है, 3 लोगों का ज्ञान मिलता है, अपने उन्हें साक्षी बोल के जन्म मरण में नहीं आता है, देवी देवताएं जन्म मरण में आता है। आप तो हाईकोर्ट जज बना मगर आप देवता बनना चाहते हो, बोला उन्हें, वो हाईकोर्ट जज बहुत बड़ा पोस्ट है, देवता बनने का चांस रहता बोल के मुझे पता नहीं था, उन्हें बोलते ही देवता बनना बोले तो क्या करना बोले तो जैसा सात्विक भोजन करना, दैवी गुण धारण करना, पवित्र बनना और अपने योगी बनना, तो फिर अभी अच्छी है अपने को, मैं तो जज हूँ जज तो हुआ तो मैं देवता भी बनना बोल के संकल्प लिया। मैं अपने 24 ईयर्स है अभी मैं ब्रह्मा कुमार इसका फॉलो करता हूँ और मैं 69,000 केसेस डिसाइड किया हूँ और मीडिएशन कंसिलिएशन से भी कई केसेस डिसाइड किया हूँ और ऑनलाइन में भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हाईकोर्ट में जो पेंडिंग केसेस में भी मैं डिसाइड किया हूँ क्योंकि आप जो अपने भाई ललित भाई बोले जैसा ये अस्त्र शक्तियां बढ़ता है, पावर टू डिसाइड पावर टू डिस्क्रिमिनेट पावर टू डिसाइड पावर टू टॉलरेट पावर टू एकोमोडेट पावर टू कोऑपरेट पावर टू पैकअप जितने भी शक्तियां हैं और जितने भी केसेस है दुनिया में कहीं ना कोई विकार से पैदा होता, Today, I think Honorable Justice Pachapure was saying, all the cases arise out of काम के वजह से, क्रोध की वजह से, लोभ की वजह से, ईर्ष्या के आदेश से, ईगो के वजह से, ये पूरा केस कोर्ट में जो भरा हुआ है पांच विकारों का ये पर्यवसान है। उस वास्ते अगर पांच विकार अपने में नहीं है और जनता में नहीं है, कोई भी केस कोर्ट को जाने का जरूरत नहीं है। और है तो भी जितने केसेस पेंडिंग है, जितने भी कोर्ट्स, कितने भी जजेस अपॉइंट किए, पूरा भारत में इतना लाखों केस कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। जीवीके राव बहुत अच्छी बोला, क्योंकि ऐसा ब्रह्म कुमार इसका ज्ञान हर मोहल्ले में, हर कोर्ट में, मुंसिपल मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक देना, प्रजा को भी देना, ऑटोमेटिक मीडिएशन कंसीलिएशन से हर केस सेटल होगा, नहीं तो केस सेटल नहीं होगा, अपने को शांति नहीं मिलेगा, अपने को माना एक तसल्ली नहीं मिलेगा। जो उस वास्ते दिस स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स नॉट ओनली इन द सेटलमेंट ऑफ द पेंडिंग केसेस टू लीड ए हैप्पी, ए ब्लिसफुल, ए जायफुल, ए मीनिंगफुल, ए डिवाइन लाइफ। क्योंकि महीने अगर जजेस के सामने कहीं कहीं परीक्षा आता, सपोज इफ हैड आई बीन टेम्प्टेड टू द लूर्स दिस करप्शन एंड दिस अटेम्प्ट, आई वुड हैव अर्नड मे बी 1,000 crores, बट आई नेवर टचड पाप के पैसा और करप्शन की पैसा और विकार की, कभी भी मैं उसके तरफ, क्योंकि शक्ति मिलता, भगवान ने शक्ति मिलता, और वो शक्ति से वी कैन रियली बिकम ए डिवाइन पर्सन, ए डिवाइन क्वालिटीज। नींद में भी सुख से जी सकता, नींद में भी मैं सुख भोगता हूँ, आई एक्सपीरियंस सुपर सेंसेज जाए इन द स्लीप ऑल्सो एंड आई वेकअप इन द 3 o'clock एंड आई यूज टू डिसाइड द केसेस। मैं देखते देखते ही मेरे को अंडरस्टैंडिंग होता था, ये झूठ बात कर रहा है या सच बात कर रहा। सो देर आई नेवर यूज टू थिंक एनीथिंग, थिंकिंग माना पावरलेस, थिंकिंग माना अनराइटियस, क्योंकि थिंकिंग जरूरत नहीं है। अगर आत्मा शार्प है, आत्मा एकदम पवित्र है, इमीडिएटली डिसीजन ले सकता, सोचने की और सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। उस वास्ते हाँ मेरा भाइयों, आपको बहुत भाग्यशाली है आप आए हैं, जो आपने यहाँ, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है। मैं ये केस, छोटी सी केस बोलता हूँ अपने, वी आर हैविंग चार युग है ना, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, दिस इज आयरन एज, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। कलियुग में, सत्ययुग में देवी देवताएं रहता था, बोलता ना भारत जो सोने की चिड़िया था, अपने इतना भरपूर था, इतने विश्व गुरु था, मगर वहां दुनिया अपने ऐसा भारत कहां गया, क्योंकि वहां देवताएं देने वाला रहता था, कोई भी मांगने वाला, कोई भी विकार, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कोर्ट्स, कोई भी पुलिस, कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि देर वॉज नो नीड फॉर एनीथिंग इन द सत्ययुग, इन द राइटियस, इट वॉज अ परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएटेड बाई द गॉड। सो देन गोल्डन एज हैज गॉन, सिल्वर एज हैज गॉन, द्वापर में कहते ऐसी चीज, परीक्षित महाराज जस्ट द्वापर में वॉज किंग। सो परीक्षित महाराज कने दो लोग आया, कहते दो लोग आया अपने, एक ए ने उसका लैंड बी को सेल करा, सेल करे तो फिर अपने जो बी ने क्या करा, उन्हें टिलिंग वॉज फ्लोइंग, उसमें जो सोने की अशरफिया, सोने की काइंस मिले, कहते काइंस मिले तो फिर उन्हें ये उन्हें बोला, कहते आपका जमीन है, मैं सोने का पैसा नहीं लिया, उस वास्ते आपकी इच्छा है, उसी में वापस देने गए, कहते जो प्रीवियस ओनर को, नहीं नहीं मैं भेज दिया आपका इच्छा है, उन्हें बोले, कहते दोनों मिलकर राजा कहने गए, कहते परीक्षित महाराज, अरे इतने सच्चे है, उन्हें इतने दोनों बोला, इसका सोने के सिक्के ने जो प्रीवियस ओनर है, फिर उन्हें बोला नहीं नहीं उन्हें खरीदा, उसको दे देना, ने जो खरीदे बाद फिर ने टिल करे तो मिला, नहीं नहीं उसका इसका पैसा नहीं दे, उसको देना। मगर उसमें दोनों केस एडजन हुआ, कहते केस एडजन बोलते नेक्स्ट डे आया तो फिर राजा कहने आए तो नहीं नहीं ये मेरा सोना है, इन्हें बेचने वाले बोला नहीं नहीं वो मेरा को आना बोलते, खरीदने वाले बोला, दोनों बदल गए, कहते
ये तो क्या बदल गए कहते। तो फिर परीक्षित महाराज नारद को बुलाए कहते, पूछे कहते ये क्या है, ये लोगों का इतना कैरेक्टर था, अभी ये लोग दोनों ये डिस्प्यूट हुआ, बहुत दिक्कत है, क्या हुआ। राजा कल तक वो द्वापर युग था, आज रात में कलयुग एंटर हुआ, ये कलयुग का धर्म ऐसे होता। उस वास्ते अब कलयुग चल रहा है, पूरा जो विकार पंच अब जड़जड़ी भूत अपने विषय वैतरणी नदी में लोग बा जा रहा है, दुख अशांति घृणा ईर्ष्या द्वेष से जल रहा है, उस वास्ते भगवान आया है फिर सतयुग लाने के वास्ते। उस वास्ते हम सतयुग में जाने का अगर आपको जो लक्ष्य है, लक्षण है और डिजायर है, ये गोल्डन चांस है। उस वास्ते आप जाते ही 7 घंटे का कोर्स लेके अभी देवता बनना, यही मेरा शुभ भावना है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स हमारे चेयरपर्सन ऑफ द सेशन और पैट्रन ऑफ जूरिस्ट विंग। आज भी मंच पर जूरिस्ट विंग की कमिटी, मैनेजमेंट कमिटी बैठी हुई है, तो पूरी मैनेजमेंट कमिटी की तरफ से और जूरिस्ट विंग के फैमिली मेंबर्स जो अबाउट 1000 हैं उनकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जो आप सभी ने आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट लेकर यहाँ पधारे हैं। और मुझे आशा ही नहीं मगर पूरा विश्वास है कि जितने इंटरेस्ट से आप यहाँ आए हैं उतने ही इंटरेस्ट से आप इस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में भी धारण करेंगे और डे टू डे की लाइफ में यूज करेंगे। अब मैं हमारे बीच एडवोकेट बीके प्रदीप भाई मौजूद हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमारे समक्ष वोट ऑफ थैंक्स रखेंगे। प्रदीप भाई।
ओम शांति। कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में होता है बार और बेंच, और यहां पे सभा और मंच। वहां पे कोर्ट में बार और बेंच एक दूसरे के पूरक होते हैं, और यहां पर सभा और मंच एक दूसरे के पूरक होते हैं। होते हैं कि नहीं? तो आप सभी जब पहली बार यहां पे आए हैं, यहां पे आने का विचार आप सबको आया, तो कुछ न कुछ चातरकता, कुछ न कुछ क्यूरिसिटी लेके चले थे, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत कुछ आप सबने सीखा होगा। इस विषय में एक कविता की 2 लाइनें मैं आपको बताता हूं। तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तुझ से लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, तुझ से लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको वस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो धन्यवाद का सत्र हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दीदी ने परमपिता परमात्मा शिव का आह्वान किया था, जो कि सुप्रीम जज हैं। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव की वजह से ये सभा संपन्न हो पाई, ये कार्यक्रम बहुत अच्छी रीति से संपन्न हो पाया। इसके पश्चात दीदी निर्मला जी का, जो कि डायरेक्टर ज्ञान सरोवर की हैं, ज्ञान सरोवर को एक रूहे गुलाब का बगीचा इन्होंने बना के रखा हुआ है, उनकी परमिशन से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनका भी धन्यवाद करते हैं। इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस बीपी दास, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और बहुत अच्छे अनुभव हमें बताए कि एडीआर सिस्टम के द्वारा केस का निवारण कैसे किया जा सकता है, मीडिएटर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जो कि राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी का धन्यवाद करते हैं, जो चेयरपर्सन है जूरिस्ट विंग की, इनकी अध्यक्षता में पहली ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रही है, इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। इसके पश्चात हम जस्टिस बीडी राठी जी का, जो कि एक बागवान की तरह, जूरिस्ट विंग के बागवान की तरह इन्होंने संभाला हुआ है जूरिस्ट विंग को, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वो वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में भी ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है। फिर आदरणीय ललित भाई जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी हैं और ब्रह्मा कुमारीज के सीए भी हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया राजयोग से निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति किस प्रकार से आती है। वैसे तो अष्ट शक्तियां होती हैं और उन्होंने अदृश्य शक्ति जो बिजली का उदाहरण देके बताया कि कितने सी संसाधन इससे चल सकते हैं, तो हमारे द्वारा जो राजयोग का अभ्यास निरंतर किया जाएगा उससे कितनी ही हमारे अंदर शक्तियां, ऊर्जा संग्रहित होगी, वो उन्होंने बताया, इसलिए भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद जीवी राव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हम धन्यवाद करते हैं, जो कि उन्होंने अपने अनुभवों से हमें ओतप्रोत किया। उन्होंने बताया आपकी शुभ भावना के न्यायाधीशों के लिए एक कार्यक्रम का ऐसा आयोजन किया जाए जो मेडिटेशन सीख सकें। तो मैं आशा करता हूं दीदी से, हमारे चेयरपर्सन दीदी से, कि उनका ये विचार ध्यान में रखा जाए। तो जीवी राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना समय दिया। इसके पश्चात जस्टिस ऐश्वर्या जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे जूरिस्ट विंग के संस्थापक भी हैं, संरक्षक भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना समय दिया, अपने अनुभवों से ओतप्रोत कराया कि 24 वर्षों से वो ब्रह्मा कुमारीज के इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कैसे कैसे निर्णय अपने श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा, निर्णय करने की शक्ति के द्वारा, परखने की शक्ति के द्वारा किए, उनका तहे दिल से धन्यवाद। इसके बाद आदरणीय लता दीदी का और उनके साथ श्रद्धा दीदी हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, ताकि उन्होंने एक कड़ी की तरह जोड़ के रखा कार्यक्रम को। तहे दिल से लता दीदी का और श्रद्धा दीदी का भी धन्यवाद। और विद्या दीदी का, जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, आध्यात्मिकता से नजरिया बदलने की जो जरूरत है वो उन्होंने बताया, इसके लिए विद्या दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं ज्ञान सरोवर के हर विभाग के भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संपन्न होना असंभव था। और आप सभी जिन्होंने अपना समय दिया, सभा के सदस्य बनकर अपने महानुभावों के विचार सुने और उनको जीवन में आत्मसात करने का निर्णय लिया है, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
प्रदीप भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऑल द वे आबू रोड से यहाँ तक आए और ये धन्यवाद प्रस्तुत किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।